एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम इतिहास की एक काफी दिलचस्प और शायद थोड़ी भूली बिसरी गली में चलेंगे।
हाँ, और एक ऐसी गली जिसके बारे में धारणाएं अक्सर मतलब सही नहीं होती। हम बात कर रहे हैं पवित्र रोमन साम्राज्य की, होली रोमन एम्पायर, HRA जिसे कहते हैं।
बिल्कुल। और नाम सुनते ही अक्सर वो वोल्टेयर वाली बात याद आ जाती है ना, कि न पवित्र न रोमन न साम्राज्य।
हाँ वही। और आम तौर पर यही छवि है कि ये हजार साल तो चला पर था बड़ा कमजोर, बिखरा हुआ और आखिर में फेल हो गया।
जी, और यहीं पर आज की हमारी बातचीत का फोकस है। हमारे हाथ में है इतिहासकार जोआचिम वॉले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब, द होली रोमन एम्पायर, A Thousand Years of Europe's History।
और वाले साहब इस पूरी पारंपरिक सोच को, मतलब जिसे पतनवादी नजरिया कहते हैं, उसे चुनौती दे रहे हैं।
हाँ, उनका मूल सवाल यही है भाई, अगर ये इतना ही नाकारा था, इतना ही बेकार था, तो हजार साल कैसे टिक गया? सोचने वाली बात है।
बिल्कुल, हजार साल कोई मजाक नहीं है। तो वाले का कहना है कि हमें इसे आज के देशों के पैमाने पर नहीं तोलना चाहिए। इसकी अपनी अलग पहचान थी, अपना अलग मकसद था।
सही कहा, और शायद यही इसकी आज की प्रासंगिकता भी है। कैसे अलग अलग पहचान, अलग अलग हितों वाले समूह एक साथ रह सकते हैं, एक व्यवस्था में काम कर सकते हैं,
चाहे वो आज का यूरोपीय संघ हो या फिर मतलब किसी भी विविधता वाले समाज की बात हो।
बिल्कुल। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं लेखक से ही। ये जोआचिम वाले हैं कौन और इनका नजरिया इतना खास क्यों माना जाता है?
जोआचिम वाले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जर्मन हिस्ट्री और थॉट के प्रोफेसर एमेरिटस हैं, मतलब काफी सम्मानित अकादमिक है। ब्रिटिश अकेडमी के फेलो भी हैं।
और उन्होंने दशकों तक जर्मनी के आर्काइव्स में, मतलब अभिलेखागारों में गहरा शोध किया है। तो वो कोई हवा में बात नहीं कर रहे, उन्हें अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया में एचआरई और शुरुआती आधुनिक जर्मनी का एक बड़ा नाम माना जाता है।
लेकिन उनका नजरिया अलग क्यों है, खास क्या है उसमें?
खास ये है कि वो उन पुराने इतिहासकारों से अलग हटकर सोचते हैं, खासकर वो जो 19वीं सदी के जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। वो इतिहासकार एचआरई को इसलिए कमजोर मानते थे क्योंकि वो एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड जर्मन राष्ट्रराज्य बनने के रास्ते में रोड़ा था।
अच्छा, मतलब वो राष्ट्र राज्य के चश्मे से देख रहे थे।
हाँ, जबकि वाले का नजरिया, जिसे आप पोस्ट नेशनलिस्ट या गैर राष्ट्रवादी कह सकते हैं, वो एचआरई को उस चश्मे से नहीं देखता।
तो फिर किस नजरिए से देखते हैं?
वो उसे उसकी अपनी शर्तों पे समझने की कोशिश करते हैं, एक बहुत ही जटिल पॉलिसेंट्रिक, मतलब बहुकेंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, जहां सत्ता या सॉवरेनिटी बंटी हुई थी और शासन किसी एक की मर्जी से नहीं बल्कि लगातार नेगोशिएशन, बातचीत, समझौतों और सबसे जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं से चलता था।
अच्छा, तो ये असफल राष्ट्र राज्य वाली कहानी को वो मानते ही नहीं?
बिल्कुल नहीं, उनके लिए ये एक अलग ही तरह की, अपने ढंग की सफल व्यवस्था थी, इसलिए आज उन्हें इस विषय पर इतनी अहम आवाज माना जाता है।
दिलचस्प। तो फिर इस किताब का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाले क्या कहना चाह रहे हैं इसके जरिए?
किताब का मेन टारगेट है एचआरएसई की रेप्यूटेशन को ठीक करना, उसे फिर से स्थापित करना। वाले ये दिखाना चाहते हैं कि ये यूरोप की सबसे टिकाऊ राजनीतिक इकाइयों में से एक थी, पर हाँ, सबसे ज्यादा गलत समझी गई इकाइयों में से भी एक।
और उनका केंद्रीय तर्क क्या है, मतलब मेन पॉइंट?
द मेन पॉइंट ये है कि एचआरई, खासकर 1493 से 1806 वाला जो दौर है, वो एक असाधारण रूप से रेजिलियंट, मतलब लचीला, एडाप्टिव यानी अनुकूलनीय, और वायबल यानी कारगर राजनीतिक और कानूनी ढांचा था।
आपने कहा कानूनी ढांचा, इस पे इतना जोर क्यों? साम्राज्य सुनते ही तो तलवारें और सेनाएं ध्यान में आती हैं।
हाँ, यही तो वाले का नजरिया अलग है। वो कहते हैं कि एचआरई का मुख्य काम कोई बहुत शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता या मिलिट्री पावर बनना नहीं था।
तो फिर क्या था?
उसका असली काम था पीस कीपिंग, शांति बनाए रखना, झगड़ों को मैनेज करना और अपने हजारों सदस्यों, चाहे वो बड़े बड़े प्रिंसेस हों, फ्री सिटीज हों या छोटे मोटे लॉर्ड्स, सबके अधिकारों की रक्षा करना। इसीलिए वाले इसे बार बार एक कानूनी समुदाय कहते हैं, जर्मन में रेश्क गेमाइनशाफ्ट।
रेश्क गेमाइनशाफ्ट, ये शब्द थोड़ा भारी है, मतलब एक ऐसा समुदाय जो कानून से चलता हो।
हाँ, आप मोटे तौर पर यही समझ सकती हैं, एक लीगल कम्युनिटी जहाँ कानून सुप्रीम था और विवाद सुलझाने के लिए तयशुदा कानूनी रास्ते थे, अदालतें थीं।
अच्छा, तो किताब किस दौर पे फोकस करती है ज्यादा?
किताब मुख्य रूप से इसी अर्ली मॉडर्न पीरियड पर, मतलब शुरुआती आधुनिक काल पर फोकस करती है। मोटे तौर पे 1490 के दशक के इंपीरियल रिफॉर्म्स, वो जो राइक्स रिफॉर्म्स थे, वहां से लेकर 1806 में नेपोलियन के हाथों इसके खत्म होने तक।
और इसमें वो सारे बड़े पड़ाव आ जाते होंगे, रिफॉर्मेशन, 30 साल वाला युद्ध, वेस्टफेलिया की संधि।
बिल्कुल, वो सब इसमें शामिल हैं। सुधार आंदोलन, ऑक्सबर्ग की शांति, 30 वर्षीय युद्ध, वेस्टफेलिया की शांति, फिर प्रशिया का उदय और आखिर में नेपोलियन द्वारा अंत। साथ ही वो साम्राज्य के स्ट्रक्चर, जैसे सम्राट और रियासतों का रिश्ता, वो इंपीरियल डाइट, राइक्सटाग, अदालतें, क्षेत्रीय सर्कल्स, राइस क्राइसिस, पहचान, संस्कृति, इन सब पर भी बात करते हैं।
चलिए तो फिर इस लंबे सफर के कुछ अहम पड़ावों को वाले की नजर से देखते हैं। शुरू करते हैं लगभग 1493-1555 के दौर से, जिसे वो प्रारंभिक आधुनिक साम्राज्य की नींव कह रहे हैं। क्या खास हुआ इस दौरान?
ये सम्राट मैक्सिमिलियन प्रथम का समय था और इस वक्त कई महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार हुए। इन्हें कहते हैं राइक्स रिफॉर्म, यानी शाही सुधार।
इनका मकसद क्या था? सेंट्रलाइजेशन?
नहीं, जैसा मैंने कहा, मकसद केंद्रीकरण नहीं था। मकसद था आंतरिक शांति स्थापित करना। एक नियम बना इविगर लैंडफ्रीड 1495, मतलब हमेशा के लिए सार्वजनिक शांति। इसका मतलब था कि आपस में लड़ाई भड़ाई बंद करो, मसले कानून से सुलझाओ, और इसके लिए संस्थाएं बनानी थी।
कौन सी संस्थाएं?
कई अहम संस्थाएं बनी या मजबूत हुई, जैसे राइक्सटैग, इंपीरियल डाइट। ये एक तरह की संसद थी जहां सम्राट और साम्राज्य के सदस्य, मतलब एस्टेट्स, मिलकर कानून बनाते थे, फैसले लेते थे।
और वो अदालत वाली बात?
हाँ, वो सबसे जरूरी थी। एक सुप्रीम कोर्ट बना, राइक्स कैमरल कोर्ट, और ये सिर्फ नाम की अदालत नहीं थी। लोग सचमुच अपने झगड़े यहां लेकर जाते थे। ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था एक्टिव थी। और प्रशासन, टैक्स वगैरह के लिए क्षेत्रीय इकाइयां भी बनी, राइक्स क्राइजे, इंपीरियल सर्कल।
तो ये सुधार साम्राज्य को एक कानूनी और कुछ हद तक एक फेडरल, मतलब संघीय रूप दे रहे थे। लेकिन फिर आया प्रोटेस्टेंट सुधार लगभग 1517 से, मार्टिन लूथर।
उसने तो सब हिला दिया होगा, धर्म के नाम पर तो बहुत झगड़े हुए हैं।
बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जबरदस्त संकट था, और परंपरागत इतिहास अक्सर इसे साम्राज्य को तोड़ने वाली घटना ही मानता है।
लेकिन वाले ऐसा नहीं मानते।
वाले यहाँ भी एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, तनाव बहुत बढ़ा, साम्राज्य कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट गुटों में साफ साफ बट गया, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह ढही नहीं, बल्कि उसने इस अभूतपूर्व चुनौती से निपटने का एक रास्ता निकाला।
रास्ता निकाला, वो कैसे?
इसका सबसे बड़ा सबूत है 1555 की ऑक्सबर्ग की शांति, पीस ऑफ ऑक्सबर्ग। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल, व्यावहारिक समझौता था।
इसमें क्या तय हुआ?
इसमें एक सिद्धांत माना गया, कुयूज रेजियो एओस रिलीजियो, जिसका मतलब है जिसका राज उसका धर्म। यानी हर इलाके का शासक तय करेगा कि उसके क्षेत्र का ऑफिशियल धर्म कैथोलिक होगा या ल्यूथरन। अच्छा, तो ये धार्मिक सहअस्तित्व को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश थी।
हाँ बिल्कुल, और इसने कमाल का काम किया। लगभग 60 साल तक साम्राज्य में मोटे तौर पर शांति बनी रही। ये दिखाता है कि सिस्टम जरूरत के हिसाब से अडाप्ट कर सकता था, वो लचीला था।
60 साल की शांति, उस जमाने के हिसाब से तो ये वाकई बहुत बड़ी बात रही होगी। पर यह शांति टिकी नहीं। इसके बाद आया 30 वर्षीय युद्ध 1618-1648, वो तो यूरोप के इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। ये तो साम्राज्य की नाकामी ही हुई ना।
भले इसे सीधे तौर पर साम्राज्य की नाकामी नहीं मानते, उनका तर्क थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ धार्मिक युद्ध नहीं था, इसकी जड़ें एक संवैधानिक संकट में थी।
संवैधानिक संकट? कैसा?
जब सम्राट फर्डिनेंड द्वितीय ने, जो कि कट्टर कैथोलिक थे, उन्होंने ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और कैथोलिक शासन थोपने की कोशिश की, तो प्रोटेस्टेंट सदस्यों ने विरोध किया। ये अंदरूनी झगड़ा था।
लेकिन ये तो पूरे यूरोप का युद्ध बन गया था।
हाँ, क्योंकि बाद में स्वीडन और फ्रांस जैसी बाहरी ताकतें भी इसमें कूद पड़ी अपने अपने हितों के लिए, तब ये एक बड़ा यूरोपीय युद्ध बन गया। तो वाइल के अनुसार ये साम्राज्य के डिजाइन की कोई अंदरूनी खराबी नहीं थी, बल्कि कुछ खास राजनीतिक फैसलों और बाहरी हस्तक्षेप का नतीजा था।
और इस भयानक युद्ध का अंत कैसे हुआ? क्या इसने साम्राज्य को पूरी तरह बर्बाद कर दिया?
युद्ध इतना विनाशकारी था, इतना भयानक था, कि इसने असल में लोगों को कानून और बातचीत की पुरानी व्यवस्था की कीमत समझाई। सबने देखा कि जब व्यवस्था टूटती है तो क्या हश्र होता है।
तो फिर क्या हुआ?
इसका अंत हुआ 1648 की वेस्टफेलिया की शांति से, पीस ऑफ वेस्टफेलिया। और ये वो पॉइंट है जहां वाइल्ड पारंपरिक सोच को सबसे जोरदार तरीके से चैलेंज करते हैं।
हाँ, मैंने भी यही सुना है कि वेस्टफेलिया की संधि ने तो एचआरई को बिल्कुल शक्तिहीन कर दिया था, उसके ताबूत में आखिरी कील की तरह। क्या वाइल ये नहीं मानते?
बिल्कुल नहीं, उल्टा मानते हैं। ये वाले के तर्क का शायद सबसे अहम हिस्सा है। वो कहते हैं कि वेस्टफेलिया की शांति साम्राज्य का अंत नहीं थी, बल्कि उसके संविधान का नवीनीकरण और स्पष्टीकरण थी।
नवीनीकरण कैसे?
इसने साम्राज्य के सदस्यों, खासकर राजकुमारों के अधिकारों, जिसे जर्मन लिबर्टीज कहते थे, उसकी पुष्टि की। कैल्विनवाद को भी कैथोलिक और लूथरन धर्मों के बराबर कानूनी मान्यता दी, और साम्राज्य की संस्थाओं को और परिष्कृत किया, उन्हें कन्फर्म किया। वाले के मुताबिक इसने साम्राज्य को एक नया स्थिर आधार दिया।
तो मतलब वेस्टफेलिया के बाद का साम्राज्य कमजोर नहीं था?
वाले के अनुसार नहीं, वेस्टफेलिया के बाद का एचआरए एक स्थिर, ज्यादातर शांतिपूर्ण और काम करने वाला रक्षात्मक गठजोड़ बन गया, एक डिफेंसिव बुंडिस। इसका मुख्य काम अब आंतरिक शांति बनाए रखना और बाहरी खतरों जैसे फ्रांस और ऑटोमन साम्राज्य से बचाव करना था, और इस काम में यह काफी हद तक सफल भी रहा। वाले से साम्राज्य का बारोक तौर कहते हैं, जो काफी स्थिर और कल्चरली समृद्ध भी था।
ये तो वाकई इतिहास की किताबों में पढ़ी बातों से काफी अलग लग रहा है। लेकिन अगर साम्राज्य इतना स्थिर था, इतना कारगर था, तो फिर 1806 में इसका अंत क्यों और कैसे हुआ? अगर अंदर से कमजोर नहीं था तो फिर?
वाले का जवाब यहां भी वही है। यह अंदरूनी कमजोरी या बुढ़ापे के कारण नहीं गिरा। साम्राज्य 18वीं सदी के अंत तक भी मतलब काम कर रहा था, एक फंक्शनल सिस्टम था। इसके पतन के पीछे दो बड़े कारण थे, एक अंदरूनी और एक बाहरी।
अच्छा, वो क्या थे?
अंदरूनी कारण था प्रशिया का उदय। फ्रेडरिक महान के दौर में प्रशिया साम्राज्य के अंदर ही एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर बन गया। ये एक नई सिचुएशन थी। साम्राज्य का ही एक सदस्य अब सम्राट, जो आमतौर पर ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग होते थे, और पूरी व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था।
इसे ही जर्मन द्वैतवाद कहते हैं, ऑस्ट्रिया बनाम प्रशिया।
हाँ बिल्कुल, जर्मन ड्यूअलिज्म। इसने साम्राज्य की कलेक्टिव एक्शन मतलब मिलके काम करने की क्षमता को बहुत कमजोर कर दिया। वो पुरानी एकता नहीं रही।
और बाहरी कारण वो क्या था?
बाहरी और जो निर्णायक कारण बना वो था फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उभार। ये एक जबरदस्त बाहरी मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल फोर्स थी। पहले नेपोलियन ने साम्राज्य की सेनाओं को हराया और फिर उसने सिस्टमैटिक तरीके से इसे खत्म ही कर दिया।
कैसे?
उसने जर्मनी का नक्शा ही बदल दिया, कई राज्यों को खत्म किया, नए बनाए अपने हिसाब से, और आखिरकार 1806 में अंतिम एचआरई सम्राट फ्रांसिस द्वितीय को ताज छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तवाले का निष्कर्ष साफ है, साम्राज्य तब तक चला जब तक उसे बाहर से जबरदस्ती तोड़ा नहीं गया।
ये पूरी कहानी सुनने के बाद ये तो साफ है कि वाले एचआरई को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। अगर हम उनके मुख्य संदेशों को समेटना चाहें तो वो क्या होंगे? मतलब की टेकअवेज क्या हैं?
सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी संदेश, एचआरई को एक असफल राष्ट्र राज्य मानकर खारिज मत कीजिए। उसे उसके अपने मकसद के हिसाब से देखिए। कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति कायम करना, अधिकारों की रक्षा करना।
दूसरा कि ये मुख्य रूप से एक कानूनी समुदाय था, रेक्सगेमेनशाफ्ट, जहां कानून और अदालतें, जैसे वो राइक्सकामरगेरिस्ट, झगड़े सुलझाने का अहम जरिया थी। ये सिर्फ तलवार का राज नहीं था।
बिल्कुल। तीसरा शायद ये कि सम्राट और साम्राज्य के सदस्यों के बीच जो सत्ता का संतुलन था, वो द्वैतवाद वो कोई खराबी नहीं बल्कि सिस्टम का एक फीचर था। इसने किसी एक को पूरी तरह हावी होने से रोका और बातचीत को जरूरी बनाया।
हाँ, कह सकते हैं। चौथा संदेश है इसकी अडैप्टेबिलिटी, इसकी अनुकूलनशीलता। इसने प्रोटेस्टेंट सुधार जैसे बड़े संकट झेले और वेस्टफेलिया की शांति के जरिए खुद को फिर से संगठित किया। ये रिजिड नहीं था, वक्त के साथ बदला।
पांचवां, 1648 के बाद इसका मुख्य काम शांति और सुरक्षा देना था, और इसमें यह काफी हद तक सफल रहा। यह कोई टूटा फूटा ढांचा नहीं था।
एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या आम लोगों की कोई पहचान थी इस साम्राज्य से, या वो सिर्फ अपने इलाके, अपने धर्म, अपने राजा से ही जुड़े थे?
ये वाले का छठा अहम पॉइंट है। वो कहते हैं कि लोगों की पहचान मल्टी लेयर्ड थी, बहुस्तरीय। कोई व्यक्ति बवेरियन भी हो सकता था, लूथरन भी, और साथ ही खुद को साम्राज्य का एक वफादार सदस्य भी मान सकता था। वाले एक तरह की शाही देशभक्ति की बात करते हैं, रेक्स्ट पत्रियोटिज्म।
ये कैसी देशभक्ति थी?
ये किसी राजा या राष्ट्र के प्रति नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के प्रति थी जो कानून, शांति और जर्मन स्वतंत्रताओं यानी स्थानीय अधिकारों की गारंटी देती थी। उस साझा कानूनी छत के प्रति वफादारी थी।
और सातवां और आखिरी संदेश शायद वही पतन वाली बात है।
हाँ, कि साम्राज्य अंदरूनी कारणों से खुद बखुद नहीं ढहा, बल्कि नेपोलियन की बाहरी सैन्य ताकत ने उसे नष्ट किया। द एंड वॉज एक्सटर्नल।
वाइले की किताब से कुछ ऐसी खास बातें या विचार जो याद रह जाते हैं, जो उनकी पूरी सोच का निचोड़ हो।
हाँ, कई हैं। जैसे उनका ये कहना, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, एचआरई एक असफल राष्ट्र राज्य नहीं, बल्कि कानून और शांति पर आधारित एक सफल गैर राष्ट्रीय बहुस्तरीय शासन प्रणाली थी। ये सीधे सीधे पुरानी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को चुनौती है।
और वेस्टफेलिया वाली बात भी बहुत पावरफुल लगती है। वेस्टफेलिया की शांति साम्राज्य का अंत नहीं, बल्कि उसके नवीनीकृत और स्थिर अस्तित्व का आधार थी। ये उस संधि को देखने का नजरिया ही बदल देता है।
कीतरण, जुरिडिफिकेशन यूरोप के लिए इसका बड़ा योगदान था, मतलब झगड़ों को तलवार से कोर्टरूम तक ले जाना।
और आखिर में पतन पर उनका निष्कर्ष, साम्राज्य आंतरिक विरोधाभासों से नहीं ढहा, बल्कि क्रांतिकारी फ्रांस की सैन्य शक्ति द्वारा नष्ट किया गया, जिम्मेदारी बाहर।
ये सब मिलकर एचआरए की एक बहुत अलग और ईमानदारी से कहूँ तो ज्यादा सकारात्मक और फंक्शनल तस्वीर पेश करते हैं।
ये सब सुनना बहुत ही रोचक है, आंखें खोलने वाला है। लेकिन सवाल वही है, आज की दुनिया में हमारे लिए इस सदियों पुराने धूल खा रहे साम्राज्य के इतिहास की क्या प्रासंगिकता है? हम इससे क्या सीख सकते हैं?
मेरे ख्याल से कई सबक हैं। पहला तो फेडरलिज्म मतलब संघवाद और यूरोपियन संघ जैसी मल्टीनेशनल संरचनाओं को समझने के लिए एचआरए एक ऐतिहासिक उदाहरण है कि सत्ता को बांटा जा सकता है, कि अलग अलग पहचान वाली इकाइयां बातचीत और कानूनी समझौतों से साथ रह सकती हैं बिना किसी एक सुपर पावरफुल सेंटर के।
शायद भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए भी इसमें कुछ सोचने को हो, कैसे अलग अलग पहचानों को एक साथ साधना है।
बिल्कुल। दूसरा, कानून के शासन का महत्व, रूल ऑफ लॉ। ये इतिहास दिखाता है कि कानून और कानूनी संस्थाएं सिर्फ मिलिट्री माइट से ज्यादा टिकाऊ स्थिरता दे सकती हैं। अगर झगड़े सुलझाने के मान्य और निष्पक्ष तरीके हों तो समाज ज्यादा शांति से रह सकता है। एचआरई में अदालतों का इतना इस्तेमाल यही दिखाता है कि लोगों को सिस्टम पर भरोसा था।
और ये भी एक सबक है कि हमें अतीत का मूल्यांकन उसके अपने समय और संदर्भ में करना चाहिए, उसे आज के पैमानों से नहीं आंकना चाहिए। एचआरई को फेल कहना शायद इसीलिए आसान है क्योंकि हम उसमें आज का नेशन स्टेट ढूंढ रहे हैं, जो वो था ही नहीं।
एकदम सही कहा। और एक और बात, विविधता का प्रबंधन। एचआरई ने, चाहे वो ऑक्सबर्ग हो या वेस्टफेलिया, उसने धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों के साथ जीना सीखा। यह दिखाता है कि मतभेदों को मिटाने की बजाय उनके साथ एडजस्ट करने के रास्ते खोजना भी संभव है, कॉम्प्रोमाइज की वैल्यू।
और शायद संस्थागत लचीलापन, कि जो सिस्टम बातचीत और कानून पर टिके होते हैं वो शायद संकटों का सामना बेहतर कर पाते हैं।
हाँ, ये भी एक अहम बिंदु है।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा, सबसे अहम बात जो श्रोताओं तक जानी चाहिए?
मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि हमें पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में अपनी इमेज बदलनी होगी। उसे इतिहास की असफलताओं की धूल भरी अलमारी से निकालकर यूरोप के इतिहास के एक अनोखे, जटिल और लंबे समय तक चले एक तरह के सफल प्रयोग के रूप में देखना होगा। ये कमजोर नहीं था, ये बस अलग था।
हाँ, और इसकी सफलता शायद इसी में थी कि इसने हजार साल तक मध्य यूरोप में एक तरह की कानूनी व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखी। ये अपने आप में बड़ी बात है।
बिल्कुल। और मेरे लिए शायद सबसे चौंकाने वाली बात वेस्टफेलिया की संधि की वाले द्वारा की गई री इंटरप्रिटेशन है, कि वो अंत नहीं बल्कि एक नई स्थिर शुरुआत थी। ये दिखाता है कि इतिहास कितना डायनेमिक हो सकता है, कैसे नए नजरिए पुरानी समझ को बदल सकते हैं।
प्रमेथी।
हाँ, और इसकी विरासत शायद उन्हीं सिद्धांतों में है, संघवाद, कानून का शासन और विविधता में एकता साधने की वो मुश्किल कोशिश, जो आज भी दुनिया भर में उतनी ही प्रासंगिक है।
बिल्कुल। सोचने पर मजबूर करता है कि सफलता और ताकत के मायने हमेशा एक जैसे नहीं होते।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।